नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। सरकार ने फिर कहा, देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं, 74 दिनों की आरक्षित क्षमता सुनिश्चित। इजराइल के ईरान पर फिर हमले करने से पश्चिम एशिया संघर्ष तेज। ईरान के नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसिरी को मार गिराने का दावा। अमरीकी जूरी ने मेटा और यूट्यूब को सोशल मीडिया की लत फैलाने के लिए दोषी ठहराया और उन पर $60 लाख का जुर्माना लगाया। और दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-20 चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज कहा कि भारत के पास कुल 74 दिनों की आरक्षित क्षमता है और कच्चे तेल उत्पाद भंडार और भूमिगत भंडारों में बने विशेष कार्यनीतिक भंडारण को मिलाकर वास्तविक स्टॉक लगभग 60 दिनों का है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। मंत्रालय ने कहा कि सभी खुदरा ईंधन दुकानों पर पर्याप्त आपूर्ति है और देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। एक रिपोर्ट।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश भर में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने बताया कि लगभग एक महीने की आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित है और अतिरिक्त खरीद को लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार तेल कंपनियां प्रतिदिन 50 लाख से अधिक सिलेंडर सफलतापूर्वक वितरित कर रही हैं। जमाखोरी या कालाबाजारी से बचने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके वाणिज्यिक सिलेंडरों का आवंटन भी बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि घरेलू उत्पादन के अतिरिक्त अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से 800,000 मीट्रिक टन एलपीजी कार्गो पहले से ही सुरक्षित है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच एलपीजी की खेपों के आने से लोगों को राहत मिली है। एलपीजी ले जाने वाला पोत अपोलो ओशन कल रात करीब 8 बजे नए मैंगलोर बंदरगाह पर पहुंचा और उसी समय माल उतारने का काम शुरू हो गया। बंदरगाह अधिकारियों ने संकेत दिया है कि कच्चे तेल के 2 और टैंकर जल्द ही आने की संभावना है, हालांकि उनके कार्यक्रम की अभी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने कहा है कि ईरान ने भारत, चीन तथा रूस सहित कई अन्य मित्र देशों को होर्मुज जलडमरू मध्य का उपयोग करने की अनुमति दी है। ईरान के इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को रोकने के बाद से दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है। इस मार्ग से विश्व के लगभग 20% प्राकृतिक ईंधन की ढुलाई होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जलमार्ग न खोलने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान के विरोधी देशों के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले 6 घंटों में पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। इजराइल ने ईरान के अंदर नए हमले किए हैं और लेबनान में भी अपने अभियान बढ़ाए हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उनकी सेनाओं ने मध्य ईरानी शहर इस्फहान में कई हमले किए और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स नौसेना के एक वरिष्ठ कमांडर अलीरेजा तंगसिरी के मारे जाने का दावा किया है। इजरायली सेना ने उन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजरानी को बाधित करने के प्रयासों में एक प्रमुख व्यक्ति बताया। अमरीका ने ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है और चेतावनी दी है कि यदि वार्ता विफल होती है तो और भी गंभीर परिणाम होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
संयुक्त अरब अमीरात में आज हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने ईरान से दागी गई 15 बैलिस्टिक मिसाइल और 11 ड्रोनों को विफल कर दिया। इसके साथ ही संघर्ष की शुरुआत से अब तक 372 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1826 से अधिक ड्रोन रोके गए हैं। अबू धाबी में रोकी गई एक मिसाइल का मलबा मुख्य सड़क पर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों में से एक की पहचान भारतीय नागरिक के रूप में हुई है। संयुक्त अरब अमीरात में मलबे के गिरने से अब तक मरने वालों की संख्या 11 हो गई है, जबकि 166 अन्य लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है, पूरे संयुक्त अरब अमीरात में हवाई सुरक्षा प्रणालियां हाई अलर्ट पर बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में शांति बहाली के प्रयास विफल होते दिखाई दे रहे हैं। ईरान और अमेरिका ने अपनी नीतियां और कड़ी कर ली है। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने नियंत्रण और मजबूत कर रहा है, जबकि अमेरिका इस पर क्षेत्र में अपना सैन्य बलों को तैनाती करने की तैयारी में है। अमेरिका के इन सैनिकों को ईरान में जमीनी युद्ध में शामिल किया जा सकता है। अमरीकी नौसैनिक जहाज USS त्रिपोली लगभग 2,500 मरीन कमांडो के साथ पश्चिम एशिया की ओर बढ़ रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। लॉस एंजलिस स्थित एक अमरीकी जूरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और यूट्यूब को उन नुकसानों के लिए दोषी पाया है जो उनकी प्लेटफॉर्म पर एक युवा उपयोगकर्ता को जोड़े रखने वाली व्यसनकारी डिजाइन सुविधाओं से संबंधित है। जूरी ने वादी को $60,00,000 का हर्जाना दिया, जिसमें से 70% मेटा और शेष 30% यूट्यूब द्वारा वहन किया जाएगा। ये मामला युवा उपयोगकर्ताओं पर सोशल मीडिया डिजाइन के कथित प्रभाव पर केंद्रित अपनी तरह का पहला मुकदमा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख साइमन स्टिल ने पेरिस समझौते के तहत भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान NDC में संशोधन करने के निर्णय की सराहना की है। श्री स्टिल ने कहा कि ये दिखाता है कि स्वच्छ ऊर्जा विस्तार और आर्थिक विकास एक साथ हो सकते हैं। NDC ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने के लिए सभी देशों द्वारा ली गई एक प्रतिज्ञा है। श्री स्टिल ने कहा कि भारत तेजी से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है। ये प्रतिक्रिया भारत द्वारा 2031-35 की अवधि के लिए जलवायु लक्ष्यों को मंजूरी देने के बाद आई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और कमजोर लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने तुरंत संघर्ष समाप्त करने का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुतरश ने कहा कि संघर्ष के परिणाम उन नागरिकों को भुगतने पड़ रहे हैं जिनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन ही इस संकट का एकमात्र समाधान है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुतरश ने होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही बाधित रहने पर भी चिंता व्यक्त की है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज बांग्लादेश के 56वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध मुक्ति युद्ध में किए गए साझा बलिदानों की अटूट नींव पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत आपसी प्रगति और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ साझेदारी करने के लिए तत्पर है। फ्रांस में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से भेंट की। सोशल मीडिया पर डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय एजेंडे पर चर्चा की और पश्चिम एशिया में हुए हालिया घटनाक्रमों पर भी बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्विन से भी मुलाकात की और अपनी साझेदारी को और दृढ़ करने पर चर्चा की। मालदीव के माले में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ U20 चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन भारत ने आज पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया। भारत के लिए विशाल यादव ने एक और ओमांग डोडुम ने दो गोल दागे। भारत और बांग्लादेश अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जहां उनके आगामी मुकाबले से ग्रुप बी के शीर्ष का फैसला होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने फिर कहा देश में LPG की कोई कमी नहीं, 74 दिनों की आरक्षित क्षमता सुनिश्चित। इजराइल के ईरान पर फिर हमले करने से पश्चिम एशिया संघर्ष तेज। ईरान के नौसेना कमांडर अलीरेजा तंगसिरी को मार गिराने का दावा। अमरीकी जूरी ने मेटा और यूट्यूब को सोशल मीडिया की लत फैलाने के लिए दोषी ठहराया और उन पर $60,00,000 का जुर्माना लगाया। और दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ U20 चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।